नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, दवा नल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और कूलन शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो वित्त अधिनियम 2026 योजना के अध्याय 4 में शामिल है। ये योजना करदाता को तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी।
सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।